नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का स्वागत है। स्पोर्ट्स कैन में आज के संस्करण में मैं हूं आपके साथ विनय सक्सेना, और मेरे साथ तमाम खेल खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ संजीव कुमार। संजीव जी नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आपका स्वागत है।
बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरी ओर से भी सभी सुनने वालों को नमस्कार।
सबसे पहले बात करते हैं मुख्य समाचारों की। कुश्ती में भारत के पहलवान चिराग ने अल्बानिया के तिराना में अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियन 2024 में स्वर्ण पदक जीता। महिला हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी भारत में 11 से 20 नवंबर तक खेली जाएगी। महिला फुटबॉल लीग 10 जनवरी 2025 से शुरू होकर 13 अप्रैल तक चलेगी। और विश्व टेबल टेनिस फीडर कैगलियारी 2024 टूर्नामेंट में कल भारत की महिला जोड़ी ने डबल्स का खिताब जीत लिया है। कुश्ती में भारत के पहलवान चिराग ने अल्बानिया के तिराना में अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने कल रात पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल श्रेणी में किर्गिस्तान के अब्दुल मलिक कराचोव को 4-3 से हराया। वहीं 70 किलोग्राम वर्ग में सुजीत और 97 किलोग्राम वर्ग में विक्की ने कल रात कांस्य पदक जीता। सुजीत ने ताजिकिस्तान के मुस्तफो अहमदोव को 13-4 से हराया, और विक्की ने यूक्रेन के इवान प्राइमचेंको को 7-2 से हराया और अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप में हैवीवेट वर्ग में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 के अंतिम दिन भारतीय पहलवानों ने 1 स्वर्ण 1 रजत और 7 कांस्य पदक सहित कुल 9 पदक जीते। संजीव जी, कुश्ती में भविष्य अच्छा नजर आता है नीचे के अंडर एज ग्रुप्स में, लेकिन जब ऊपर जाते हैं तो कुछ स्थितियां बदल जाती हैं। जैसे अभी हैवी वेट वर्ग में भी पदक जीता गया और स्वर्ण पदक जीता गया।
देखिए, शुरुआत तो यहीं से होती है। जैसे ये जो टूर्नामेंट है, इसी में अमन सहरावत ने 57 किलो कैटेगरी में 2022 में गोल्ड मेडल जीता था, और पहले वो गोल्ड मेडलिस्ट थे। हालांकि ट्रेडिशनली ऐसा रहा है कि जो लाइट वेट है, मिडल वेट है, उसमें भारतीय पहलवान पुरुष या महिला वर्ग में अच्छे होते हैं। हैवी वेट, सुपर हैवी वेट जो अब आगे बढ़ते जाते हैं तो उसमें बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। उसकी वजह है कि ट्रेडिशनली आप देखें तो यूएसएसआर, जो अब रशियन अलग अलग देश हो गए, उधर के हैं, ईरान के हैं, कई देशों के उधर के पहलवान जो है वही मेडल जीतते हैं।
उनका डोमिनेशन है,
उनका डोमिनेशन रहा है, और हम मान के चलते हैं कि हम इसमें अच्छे हैं, क्योंकि कोई इतिहास में बहुत कम हमारे पहलवान हुए हैं। लेकिन आपने कहा कि शुरुआत तो अच्छी होती है, लेकिन इसके बाद क्या हो जाता है। असल में अब ये देखना होगा कि हालांकि 600 से ज़्यादा पहलवान इसमें हिस्सा ले रहे थे, कि विश्व स्तर से अलग अलग देशों से कौन कौन से पहलवान आए थे। हालांकि इस एज ग्रुप में ये अनुमान लगाना बहुत मुश्किल होता है, अंडर 23 हो, अंडर 19 हो, फ्यूचर क्या होगा। बहुत से देश ऐसे होते हैं कि जो अपने बेस्ट पहलवान को शायद ना भेजे। असल तो हमारा पैमाना होता है ओलंपिक्स। अगर हम वहां जाते हैं,
मेरा प्रश्न उसी को लेकर था,
वहां जाते हैं और वहां अच्छे करते हैं, फिर वाहवाही मिलती है। ऐसे साल में बहुत सारे टूर्नामेंट्स होते हैं, अलग अलग एज कैटेगरी में होते हैं, वहां हमारे पहलवान जीतते हैं। हम ठीक है, एक दो दिन चर्चा करते हैं, लेकिन स्टार और सुपरस्टार बनना हो, जैसे अमन सहरावत से पूछा गया कि भाई आप जब कुश्ती खेलना शुरू किए थे तो फिर कैसे आप आगे बढ़े, तो उन्होंने यही कहा कि देखिए, हमसे हमेशा कहते थे अच्छा पहलवान बनना है। तो मैंने एक दिन किसी से पूछा कि अच्छा पहलवान का मतलब क्या होता है, छोटे थे जब वो 13-14-15 साल के, तो उनसे यही बताया गया कि ओलंपिक्स में जीतने का मतलब अच्छा पहलवान होता है। तो उस दिन से मैंने ठान लिया कि सब जगह जीतूंगा लेकिन ओलंपिक्स में तो जीतना ही है। तो यही मेरा कहना है कि अच्छे पहलवान की एक पहचान वही है कि ओलंपिक्स में वो जीतता है कि नहीं। तो लेकिन हाँ, हमें तारीफ करनी होगी, और जैसा मैं रिकॉर्ड देख रहा था, पिछली बार के संस्करण में भी हमारे पहलवानों ने 9 मेडल जीते थे, इस बार में भी 9 जीते हैं, एक गोल्ड मेडल है। और मान के चले कि जब अमन सहरावत ने वहां एक गोल्ड जीता था, फिर आगे उन्होंने जीता, एक रितिका हुडा ने भी जीता था, अब ये जीत रहे हैं। तो कुल मिला के भविष्य तो
अच्छा है
जी।
है। बिहार के नवनिर्मित राजगीर हॉकी स्टेडियम में 11 से 20 नवंबर तक होने वाली महिला हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सलीमा टेटे की अगुवाई में आज से 18 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा की गई। नवनीत कौर को टीम का उप कप्तान नियुक्त किया गया है। भारत अपने अभियान की शुरुआत 11 नवंबर को मलेशिया के खिलाफ करेगा।
भारत ने पिछले साल रांची में हुए आयोजन में खिताब जीता था, लेकिन उसके बाद से टीम के प्रदर्शन में गिरावट आई है। इस महाद्वीपीय प्रतियोगिता में टीम को मौजूदा ओलंपिक रजत पदक विजेता चीन, जापान, कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड सहित 5 अन्य देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। टीम में गोलकीपर की भूमिका अनुभवी सविता और उभरती प्रतिभा बीचू देवी खारीबाम साझा करेंगी। रक्षा पंक्ति की जिम्मेदारी उदिता ज्योति, इशिका चौधरी, सुशीला चानू, पुखराम बम और वैष्णवी विठल फाल्के के पास होगी। मध्य पंक्ति में टेटे के साथ नेहा, शर्मिला देवी, मनीषा चौहान, सुनीलिता टोपो और लाल रेमिस्यामी टीम को मजबूती प्रदान करेंगी। अग्रिम पंक्ति में नवनीत कौर, संगीता कुमारी, दीपिका, प्रीति दुबे और ब्यूटी डुंगडुंग टीम की मारक क्षमता को बढ़ाएंगी। सुशीला और ब्यूटी चोट से उबरने के बाद टीम से वापसी कर रही हैं। सरफिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
संजीव जी, नई कप्तान, लगभग नई टीम, कुछ युवा कुछ पुराने, तो कैसे देखें कि क्योंकि टीमें तो सारी वही हैं पुरानी जिनके साथ खेलना है हमें, चीन, जापान, कोरिया।
देखिए, महिलाओं पुरुष हॉकी में पिछले 2 ओलंपिक्स से हमने बहुत अच्छा किया है, बल्कि एशियन लेवल पे भी लगातार टीम अच्छा करती रही है, लेकिन अपेक्षित सफलता महिला वर्ग में हमें नहीं मिला है क्योंकि ओलंपिक्स में भी नहीं
क्वालिफाई कर पाए।
तो ये एक जैसा अभी हम चर्चा
मनोबल भी कुछ गिरा होगा टीम का।
जी, कुश्ती पर चर्चा कर रहे थे, ये उन सारे खेलों में है जो ओलंपिक स्पोर्ट में है, और हम अगर ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाते, एशिया में अपना दबदबा नहीं बना पाते, तो फिर अब आप छोटे मोटे टूर्नामेंट जीतते रहें, वो कोई वैसी पहचान नहीं मिलती। यहां 2 बातें हैं कि एक तो राजगीर जैसी जगह पे है जहां पर बहुत उत्साह होगा। मैं इमेजिन कर सकता हूं कि वहां पर खचाखच स्टेडियम भरा होगा, लोगों के लिए एक नया अनुभव होगा।
बिल्कुल,
भारत को होम सपोर्ट मिलेगा और जो वो एस्ट्रोटर्फ वहां नया स्टेडियम बना है वहां पर प्रैक्टिस करने को ज्यादा मिलेगा, तो होम एडवांटेज भारत को रहेगा और दर्शकों का समर्थन भी रहेगा। और जैसा कि प्लेयर कहते हैं कि 12वें खिलाड़ी वही होते हैं देश में या विदेश में खेले, तो अच्छा करना चाहिए। मुझे लगता है कि कुछ कमियों को पूरी करके भारतीय टीम उतरेगी और नए जो खिलाड़ी आ रहे हैं उनमें नई ऊर्जा होती है, एक नई सोच होती है, एक नया कॉम्बिनेशन होता है। हाल में हॉकी के एक जो उपकप्तान है पुरुष हॉकी के, उनसे एक सवाल किया गया कि भाई आप टीम लगातार 2 ओलंपिक्स में मेडल जीत चुकी है, क्या बदलाव हुआ पहले से अब तक? उन्होंने कहा कि देखिए, नए और पुराने खिलाड़ियों का मिश्रण होना जरूरी है और उससे नई ऊर्जा मिलती है। वही हम देख रहे हैं कि महिलाओं की टीम में भी होने वाला है, उम्मीद करें कि बढ़िया रिजल्ट आए।
सपोर्ट रहेगा सरकार का भी, अथॉरिटी का भी और दर्शकों का भी हमारी महिला टीम को?
बिल्कुल है, तभी हो रहा है। अगर इस तरह का सपोर्ट ना हो तो फिर मेजबानी ना मिले, और मेजबानी मिलने का मतलब और लेने का मतलब और कराने का मतलब ही है, सबका सपोर्ट है तभी हो रहा है,
क्योंकि अब एक अच्छी बात है टूर्नामेंट उड़ीसा से हटके बाकी जगह भी होने लगे हैं।
बिल्कुल, और बिहार झारखंड अब अलग अलग है, लेकिन एक समय बिहार की पहचान हॉकी थी, हॉकी अधिकतर झारखंड में ही, रांची में ही होता था, लेकिन हॉकी का खेल भले ही झारखंड वहां रांची में होता था, लेकिन ओवरऑल देखें तो आज से 23-24 साल पहले बिहार ही था, वो बिहार का ही हिस्सा था, लेकिन जब अलग हुआ तो बिहार में वो उस तरह से प्रगति नहीं हुई हॉकी की जिसकी अपेक्षा की जा सकती थी। ऐसा लगता था कि झारखंड में ही सारे टैलेंट हैं और वही सारे एस्ट्रोटर्फ है, लेकिन अब चूंकि बिहार में भी हो रहा है तो ये एक अच्छी पहल है।
अब बात करेंगे फुटबॉल की। पिछली चैंपियन ओडिशा एफसी 10 जनवरी 2025 को इंडियन वुमेन्स लीग IWL फुटबॉल टूर्नामेंट के पहले दिन ईस्ट बंगाल से खेलेगी, जबकि इसी दिन गोकुलम केरल एफसी का सामना पहली बार टूर्नामेंट में खेल रही श्रीभूमि एफसी से होगा। इस लीग का आयोजन अपने और विरोधी की मेजबानी में होने वाले मुकाबलों के प्रारूप के आधार पर होगा। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार लीग 13 अप्रैल तक चलेगी। लीग के दूसरे सत्र में हिस्सा लेने वाली 8 टीमें इस प्रकार हैं: ईस्ट बंगाल एफसी, श्रीभूमि एफसी, ओडिशा एफसी, NITFA, सेतु एफसी, गोकुलम केरल एफसी, होप्स एफसी और किकस्टार एफसी। संजीव जी, समर्थन और एडवर्टाइजमेंट होगा क्या इस टूर्नामेंट का, क्योंकि आईएसएल भी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाता है, तो ये तो आईडब्ल्यूएल है, इसके लिए फिर कैसे चलेगा?
देखिए, ये 2016 से हो रहा है टूर्नामेंट, लीग का आयोजन हो रहा है और महिला फुटबॉल में अभी काफ़ी कुछ करना बाकी है। अब उसमें टीमें बढ़ रही हैं और इसका आयोजन
बढ़ना तो अच्छा संकेत है,
अच्छा
लेकिन
संकेत है,
टैलेंट
लेकिन
भी तो निकल के आना
हाँ,
चाहिए।
लेकिन देखिए, जब खेल होगा, टीमें बढ़ेंगी, मौके ज़्यादा मिलेंगे, खिलाड़ियों का पूल बड़ा बनेगा, तो वहाँ से ही प्रगति होगी। ये अगर होगा ही नहीं तो फिर निकल के कहाँ से आएंगे, और ये लॉन्ग प्रोसेस है। अभी देखिए, पुरुषों का होता है तो वहाँ से भी हमारे जो टैलेंट निकल के आते हैं, अभी हम 125 से ऊपर रहते हैं, अभी 125 है शायद हमारा फीफा रैंकिंग में पुरुषों की टीम का, लेकिन महिलाओं ने कहीं कहीं पे अच्छा किया है हमारी टीम ने। तो अगर किसी महिला खिलाड़ी को, युवा खिलाड़ी को जो फुटबॉल अपनाना चाहती है, उसको लगे कि इस लीग में खेल के एक करियर बन सकता है, कुछ पैसे मिल सकते हैं, तो वे प्रेरणा होती है, क्योंकि आपको लगता है कि अगर मुझे भारतीय टीम में या स्टेट लेवल की टीम में इंटरनेशनली या नेशनली खेलने को ना मिले तो फिर क्या होगा हमारा भविष्य। तो यहाँ पर जब प्लेयर्स को थोड़ा बहुत ही सही पैसे मिल रहे हैं, सुविधा मिल रही है, वर्ल्ड क्लास जो स्टैंडर्ड की सारी सुविधा होती है, तो जाहिर सी बात है कि कई खिलाड़ी निकल के आएंगी और कई खिलाड़ी इससे प्रेरित होकर इस खेल को अपनाएंगी, तो इस लिहाज से अच्छा है।
भारत के विक्रमादित्य चौफला को अखिल भारतीय रेक्टेलॉन ओपन में संयुक्त अरब अमीरात के मोहम्मद कुबा से हारकर रजत पदक से संतोष करना पड़ा। इस प्रतियोगिता में भारत के आदित्य पटेल तीसरे स्थान पर रहे। महिला वर्ग में नाहिद दिवेचा चैंपियन बनी, जबकि शिखा बरासिया और तारा भंडारे दूसरे और तीसरे स्थान पर रहीं। रेक्टेलॉन टेबल टेनिस, बैडमिंटन, टेनिस और स्क्वैश जैसे चार रैकेट खेलों का संयोजन है। इटली में चल रहे विश्व टेबल टेनिस फीडर कैग्लियारी 2024 टूर्नामेंट में कल भारत की यशस्विनी घोरपड़े और कृतिका राय की जोड़ी ने महिला डबल्स का खिताब जीत लिया है। इस जोड़ी ने दक्षिण कोरिया की यू सिवू और किम हॉन को फाइनल में 3-1 से हराकर खिताब अपने नाम किया। इससे पहले टूर्नामेंट में दूसरी वरीयता प्राप्त इस भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल में जर्मनी की सोफिया क्ली और फ्रांसिस्का श्राइनर की जोड़ी को 3-1 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया था। घोरपड़े ने मिक्स डबल्स प्रतियोगिता में हरमीत देसाई के साथ सेमीफाइनल में भी जगह बनाई। हालांकि भारत की शीर्ष खिलाड़ी इटली की जॉन ओएबोडे और गाइकिया मॉनफोर्दिनी की जोड़ी से 3-0 से हार गई। टेबल टेनिस में हम संजीव जी कुछ समय से अच्छा कर रहे हैं।
अच्छा करने का फिर वही मतलब है कि हम इंटरनेशनली लगातार जीतते रहे, और अभी ये जो WTT टूर्नामेंट है वहाँ पर खिताब जीता है। मनिका बत्रा भी अभी जो टूर्नामेंट चल रहा है उसमें क्वार्टर फाइनल तक पहुंची थी। तो डबल्स और सिंगल्स दोनों में, खास तौर पे मुझे लग रहा है सिंगल्स में अगर कोई खिलाड़ी आगे बढ़ता है तो फिर वही बात होती है कि टेबल टेनिस खेलने वाले तो बहुत हैं, बट प्रोफेशनली उसको अपनाना, फिर उसमें अपना समय देना और एक प्रेरणा मिलती है। तो जैसा आपने कहा कि टैलेंट अच्छा कर रहे हैं, टैलेंट बढ़ रहे हैं और नए नए खिलाड़ी निकल के आ रहे हैं, जैसे अभी जो मुखर्जी और अकुला है, और इन दोनों ने बहुत ही अच्छा किया डबल्स में। हम ये ना देखें कि डबल्स में
चाइनीज को हराना एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे
जी,
थे
जी।
श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर मिलेंगे कुछ और ताजा खेल खबरों के साथ। संजीव जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर आपने हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रोताओं, इसी के साथ स्पोर्ट्स स्कैन की पूरी टीम के साथ विनय सक्सेना को अनुमति दीजिए। नमस्कार।